مسیح میں عزیز بہنوں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں، عزیز کلیسیا، خدا نے ہمیں اپنے بیٹے کے قیمتی خون سے خریدا ہے. ہم اس کے نمائندے ہیں، ہم مسیح کے ایلچی ہیں، ہم مسیح کے امبیسڈرز ہیں اس دھرتی پر، اور اس کے لوگ ہوتے ہوئے، اس کے نمائندے ہوتے ہوئے، اس کے ایلچی، اس کے سفیر، اس کے امبیسڈر ہوتے ہوئے ہمیں اس ساری سچویشن میں کس طرح سے پیش آنا ہے، اپنے خاندان میں یا لوگوں کے ساتھ اس سچویشنز کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. آج ہم خدا کے کلام میں سے اس پر غور کریں گے. وبائی صورتحال میں ہماری ذمہ داریاں، آر ریسپانسبلٹیز ان پینڈیمک سچویشن. جو بڑی ذمہ داری پہلی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف رجوع لائیں اور اس پر بھروسہ رکھیں، پینک نہ ہوں، گھبراہٹ کا اور دہشت کا شکار نہ ہوں، خوف کا شکار نہ ہوں، خدا پر بھروسہ رکھیں. اور پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم خود خدا کے پاس، اس کے حضور، اس کی حضوری میں اس سے رفاقت رکھنے کے لیے آگے بڑھیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سارے ماحول میں، اس ساری صورتحال میں خدا سے رابطہ کریں، اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں. کیونکہ ہم نے پچھلے جمعے بھی خدا کے کلام میں سے یہ سیکھا کہ آفتیں اور وبائیں خدا کے غصے کی وجہ سے آتی ہیں. جب خدا ہم انسانوں کی حرکتوں، ہماری کرنیوں، ہمارے کاموں، ہماری بری عادتوں، رویوں اور باتوں اور کاموں کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے تو وہ آفتیں، وبائیں اور مصیبتیں اور مری اور کال وبائیں ہم پر بھیجتا ہے. اور آج پوری دنیا جس وبا کا شکار ہے، جس آفت کا شکار ہے، اس میں ہمیں سب سے پہلے خدا کی طرف رجوع لانا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اعمال کی کتاب 3:19 میں، کہ ہم توبہ کریں، خدا کی طرف رجوع لائیں تو ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور خداوند کی طرف سے تازگی کے دن پھر لوٹ کے آئیں گے. خدا ہماری صحتیں بحال کرے گا، خدا ہمارا سکون اور چین بحال کرے گا، خدا ہمارے ملک اور ہماری قوم اور دنیا کے حالات بہترین بنا دے گا جب ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، خدا کی طرف لوٹتے ہیں، خدا کی طرف پلٹتے ہیں، ہم اپنے برے کاموں کو چھوڑتے اور خدا کی طرف جاتے ہیں. نینوا کے لوگوں نے بھی اپنے برے کاموں کو ترک کیا، اپنی بری روشوں کو چھوڑا اور خدا کی طرف رجوع لائے، خدا سے منت کی، فریاد کی، تو خدا نے انہیں معاف کیا. سو ہماری بڑی ذمہ داری مسیحیوں کی یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف رجوع لائیں، توبہ کریں. ہم مسیحی ہوتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کبھی گناہ نہیں کیا یا ہم گناہوں سے آزاد اور پاک ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو نہیں سکتا. ہم سب میں گناہ کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے. جب تک ہم اس جسم کی حالت میں ہیں، ہمارے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم گناہ کر سکتے ہیں. اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ بہت بڑے بڑے ایمانداروں سے بھی گناہ سرزد ہوئے، سوائے خداوند یسوع مسیح کے جو کامل خدا، کامل انسان بنا، اس میں کوئی گناہ نہیں. وہ گناہ، خطا اور غلطی سے پاک ہے. اس کے سوا دنیا میں کوئی انسان گناہ سے، خطا سے، غلطی سے خالی نہیں ہے. سو ہماری یہ پہلی ذمہ داری بنتی ہے اس ساری صورتحال میں کہ ہم خود اپنے شخصی اور خاندانی اور قوم کے گناہوں کی خدا سے معافی مانگیں، خدا کی طرف رجوع کریں. کیونکہ خدا ان حالات کو، ان وباؤں کو ایک الارم کے طور پر، ہمیں جگانے کے الارم کے طور پر استعمال کرتا ہے کہ میری طرف رجوع لاؤ، میری طرف پلٹو، کم ٹو می، کم بیک ٹو می. خدا نے ہمیں پیدا کیا لیکن ہم نے خدا کو چھوڑ دیا اور اپنی بری روشوں میں پڑ گئے، برے کاموں میں پڑ گئے. خدا چاہتا ہے ہم اس کی طرف لوٹیں. آؤ اس کی طرف لوٹیں اور اس پر بھروسہ کریں. انسان ہمیں نہیں بچا سکتا، کوئی میڈیکل سائنس ہمیں نہیں بچا سکتی. جب تک خدا کی طرف سے کرم اور رحم نہ ہو تب تک کوئی وسیلہ ہمارے کام نہیں آ سکتا. زبور میں لکھا، اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے، اور اگر خداوند ہی شہر کا رکھوالا نہ ہو، محافظ نہ ہو، تو پہرے دار کا جاگنا بے فائدہ ہے. जब तक खुदा रहम ना करे, उसकी तरफ से ताजगी के दिन ना आए, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। इसलिए हमें खुदा पर भरोसा रखना है कि वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा, जो हमारा खालिक और मालिक और फिदिया देने वाला है, सिर्फ वो हमें बचा सकता है। जबूर 91 इन दिनों हम बहुत पढ़ रहे, सुन रहे, गा रहे हैं, उसमें खुदा पर भरोसे की बात है। यकीनन उसमें वो कोई तावीज़ बना के पहनने की चीज नहीं है। जबूर 91 में वो लिखकर अपने घरों में आवेजा कर देने के लिए नहीं है कि सिर्फ आवेजा कर दो तो काम करेगा, बल्कि जबूर 91 खुदा के कलाम का वो हिस्सा है जो जबूर नबीस ने ईमान की हालत में खुदा पाक रूह के इल्हाम से लिखा कि जब हम आफतों और मुसीबतों में अब खुद को घिरा हुआ पाएं, जब हमारे एक तरफ हजार और दूसरी तरफ हजारों हजार गिर जाएं, मौत का शिकार हो जाएं, फना हो जाएं, आफतों में गिर जाएं, तो भी हम खुदा पर भरोसा रखें कि खुदा के परों के नीचे हमें पनाह मिलती है। वो हमारा बचाने और छुड़ाने वाला है, वो हमें महफूज रखने वाला है। जबूर 91 पनाह मांगने का एक जरिया है, खुदा की पनाह में आने का, खुद को खुदा के सुपुर्द कर देने का एक वसीला है, जिसे कुछ मालूम नहीं कि मैं किस तरह खुद को खुदा के ताबे करूं। वो जबूर 91 पढ़े और उस पर गौर करे और उसके मुताबिक अपने आप को खुदा के ताबे कर दे। क्या खुदा, मैं तेरे परों के नीचे आता हूं, मैं तेरे परों के छाओं में खुद को छुपा देता हूं ताकि तू मुझे महफूज रखे। हमारा खुदा कभी यह नहीं कहता कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, वो ये जरूर कहता है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। खुदा यस्सु ने कितना खूबसूरत वादा दिया है जाने से पहले, आसमान पर उठाए जाने से पहले, कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। खुदा पर भरोसा रखना है। जबूर 91 तलावत करें, गाएं, पढ़ें, आवेजा करें, लेकिन ईमान रखें इस पर कि मेरा खुदा इन आफतों, वबाओं और मुसीबतों में मुझे बचाने की, छुड़ाने की ताकत रखता है और मैं खुदा के सुपुर्द अपना आप, अपना घराना, अपना नेबरहुड, अपना आस पड़ोस और अपना शहर और अपना मुल्क और ये दुनिया खुदा की पनाह में देता हूं। सो हमें ये पहली जिम्मेदारी खुद से शुरू करनी है, अपने आप से, कि अपने खानदान, अपनी कौम और बनी नौ इंसान के लिए दुआ करनी है। खुदावन तो हमें मुआफ़ कर, हम तेरी तरफ लौटते हैं और तुझ पर भरोसा रखते हैं। जब तक हम खुदा पर भरोसा नहीं रखेंगे, हम आज़ाद नहीं होंगे, हम छुड़ाए नहीं जाएंगे, हम बचाए नहीं जाएंगे। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि हम खुदा से मदद और हिकमत मांगें। सिवा खुदा के कोई नहीं जो मदद कर सके। जब तमाम वसाइल इस दुनिया में, जितने वसाइल हैं, वो जवाब दे रहे हैं, किसी के पास इस वायरस से बचाव की दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं, कोई टैबलेट नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई सीरप नहीं है, खुदा से मदद मांगें और हिकमत भी मांगें खुदा से। खुदा के सिवा ना कोई हिकमत दे सकता है, ना कोई तवानाई दे सकता है, ना कोई बरकत दे सकता है, ना कोई बचा सकता है, ना छुड़ा सकता है। जबूर में लिखा हुआ है कि जंग के लिए घोड़ा तो तैयार है, लेकिन फतह खुदावंद की तरफ से है। जब तक खुदावंद फाते ना बनाए, जब खुदावंद फतह ना दे, तब तक हमारी सारी कोशिशें अधूरी और बेकार रहती हैं। खुदा से मदद मांगे सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए भी, खुद के बचाव के लिए भी, अपने तहफ्फुज और प्रिकॉशंस के लिए भी, सेफ्टी मेजर्स के लिए भी खुदा से मदद मांगें और खुदा से अकल, दानिश, हिकमत, फहम और इल्म मांगें। हमें नहीं मालूम कि क्या करना है, क्योंकि ये वायरस नया है। जैसे जैसे लोग हमें बताते जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैसेंजर में मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं कि जी ऐसा कर लो, ऐसा कर लो तो आप बचे रहोगे, ये खा लो, ये पी लो, ये लगा लो तो बचे रहोगे। हर किसी के अपने फार्मूले और अपने टोटके हैं, लेकिन इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है, सिर्फ खुदावंद जानता है। खुदा से मदद मांगे। हम ईमानदार लोग, आम इंसान हैं तो भी खुदा से मदद मांगे, हम हुक्मरान हैं तो भी खुदा से मदद मांगे, हम इंतजामिया मैनेजमेंट हैं हम तो भी खुदा से मदद मांगे, हम मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं फिर भी खुदा से मदद मांगे, हम साइंटिस्ट हैं रिसर्चर हैं फिर भी खुदा से मदद मांगे और उसी से हिकमत मांगे ताकि वो हमें सिखाए हमें समझाए कि हमने इन हालात में क्या करना है। बाइबल में कई जगहों पर मौजूद है कि खुदा के लोग जब मुसीबत में फंस गए तो खुदा के पास गए, खुदावंद अब हम क्या करें, और खुदा ने उन्हें रहनुमाई बख्शी कि तुम ऐसा करो। मूसा नबी जब कौम इसराइल को लेकर निकला तो एक जगह पानी कड़वा आ गया, खुदा से फरियाद की, खुदा ने रहनुमाई की और एक पौधा लेकर पानी में डाला और उसकी कड़वाहट दूर हो गई। खुदा कोई सबब कोई वसीला कोई जरिया बनाता है, वो इंसानों की रहनुमाई करता हिकमत देता वसीला बता देता है कि इस तरह से करो। सो हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुदा से मदद मांगें और खुदा से हिकमत भी मांगें कि खुदा मैं इन हालात में किस तरह से खुद भी और अपना ख़ानदान भी मेंटेन रखूं, इनको किस तरह से मैं मैनेज करूं कि हम महफूज रहें, मैं किस तरह से इन हालात में अपना किरदार अदा करूं। खुदा से मदद मांगें और खुदा से हिकमत और अकल मांगें। खुदा के कलाम में लिखा है जिसमें हिकमत की कमी हो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए वो झिड़कता नहीं वो गुस्सा नहीं करता वो ताने नहीं देता कि तुम बेवकूफ और मुझसे अकल मांगने आ गए, नहीं वो दे देता है फयाजी से जेनरोसिटी से खुले दिल से वो हिकमत दे देता है। सो हमारी दूसरी जिम्मेदारी है कि हम खुदा से मदद मांगें और खुदा से हिकमत मांगें। इंसानों पर तवक्कुल करने वाले शर्मिंदा होते हैं। सबके लिए शिफात करनी है हमने। हिस्कियेल का 22वां बाब है और 29वीं से 31वीं आयत, ये बड़ा अहम हवाला है खुदा के कलाम में से। खुदा खुद फरमा रहा है इसमें कि मैंने जब इरादा किया कि मैं बनी इसराइल को उनके गलत कामों की वजह से सजा दूं तो लिखा है यहां, इस मुल्क के लोगों ने सितमगरी और लूट मार की है और गरीब और मोहताज को सताया है और परदेशियों पर नाहक सख्ती की है। मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रखने में मेरे सामने खड़ा हो ताकि मैं उसे वीरान ना करूं, पर कोई ना मिला। बस मैंने अपना कहर उन पर नाजिल किया और अपने गजब की आग से उनको फना कर दिया और मैं उनकी रविश को उनके सरों पर लाया। खुदावंद खुदा फरमाता है, बनिनो इंसान अपनी गलत कारियों की वजह से अपने गुनाह और बदियों की वजह से खुदा को नाराज कर बैठते हैं और खुदा कहर नाजिल करने को होता है, लेकिन वो तलाश करता है कि कोई एक शख्स मिले जो मेरे सामने खड़ा हो मेरे सामने फरियाद करने के लिए अपनी सारी कौम और उम्मत और बनी नौ इंसान के लिए मुझसे मिन्नत करने के लिए खड़ा हो और मैं अपना कहर टाल दूं। कोई तो हो जो मेरे सामने फरियाद करे। जब सदूम और अमूरा को खुदा ने बर्बाद करने का इरादा किया था तो उसने अब्राहम पर जाहिर किया कि मैं ये करने जा रहा हूं। अब्राहम खड़ा हुआ बीच में, 50 से लेकर 10 तक आ गया। खुदा कहता रहा इतने भी हुए तो छोड़ दूंगा। काश कि अब्राहम एक पे आ जाता, कि कोई एक वहां पे हो, लूत तो निकल ही आता। हम शिफात करें सब के लिए। खुदा का कलाम ये सिखाता है कि हम सब आदमियों के लिए दुआ करें, ये नहीं कि सिर्फ हम अपने लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए अपने ख़ानदान के लिए और अपने दोस्तों के लिए दुआ करें, सब के लिए दुआ करें, तमाम इंसानों के लिए दुआ करें, चाहे वो हमारे मजहब के हैं, चाहे हम हमारे अकीदे के हामिल हैं या नहीं, चाहे हमारे उनके साथ मुखालिफत है या नहीं। ये बिल्कुल ना ध्यान में रखें कि वो हमारे अपने हैं या बेगाने हैं, हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं, बल्कि सब के लिए दुआ करें, हम सब के लिए शिफात करें, हम खुदा के सामने सब के लिए इल्तजा करें, फरियाद करें, मिन्नत करें कि खुदा तू तमाम इंसानों को मुआफ कर दे और रहम कर दे, अपना कहर ना उंडेल। खुदा चाहता है कि कोई हो जो मेरे सामने खड़ा हो रखने में, उस गैप में, उस बड़े सुराख में जो दीवार में है, उस बड़ी दरार में खड़ा हो कि मेरा कहर अंदर दाखिल ना हो, वो सामने खड़ा हो जाए। मूसा खड़ा होता रहा अपनी कौम के लिए, जब खुदा इरादा करता रहा कि मैंने इनको तबाह कर देना है, इनको मार देना है, मूसा खड़ा होता रहा, खुदा तेरी ही तो उम्मत है। खुदा यस्सु खड़ा हुआ तमाम इंसानों के मुआफ़ी के लिए। खुदा के सामने। इब्रानियों के खत में लिखा है वो अपना ही खून लेकर किबरिया के पास जा पहुंचा कि मैं उनकी गुनाहों को अपने ऊपर लेकर उनकी सजा खुद लेकर तेरे पास आता हूं। यस्सु ने अपने आप को पेश किया हमारी शिफात के लिए, वो तमाम इंसानों की शिफात करता है। बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। हम सब के लिए शिफात करें, हम सब के लिए खुदा से मिन्नत करें, तू मुझे, मेरे खानदान को, मेरी कौम कबीले को, मेरे मुल्क को, मेरे शहर को और इस दुनिया को बचा ले। सब के लिए हम दुआ करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। खुदा ने हम पे ये जिम्मेदारी लगाई है कि हम दूसरों के लिए भी दुआ करें, हम शिफात करें, इंटरसीड करें। ये बड़ी खिदमत खुदा ने हमें दी है, हम सब के लिए दुआ करें। और ये मत करें कि हमारे अपने हैं इनके लिए दुआ कर लें और दूसरों के लिए नहीं, सब के लिए दुआ करें। दूसरे मुल्कों के लिए भी दुआ करें, भले हमारे मुल्क के ताल्लुकात उनसे अच्छे हैं या नहीं, उनके लिए भी दुआ करें। उन कौमों के लिए भी दुआ करें जिनसे हमारी कौम के ताल्लुकात अच्छे नहीं, उनके लिए भी दुआ करें। खुदा सबों पर रहम करे और इस वबा से सबों को आज़ाद करे। ईमान और एहतियात के मामले में फतवे साजी से परहेज करें। इन दिनों बहुत मामला चल रहा है, जी हमारा ईमान कहाँ गया, जी खुदा तो कहता है कि कोई वबा तेरे खैमे के नज़दीक ना आएगी, इसलिए हमने इबादतें क्यों छोड़ी, हमने खुदा के घर में इकट्ठे होना क्यों छोड़ दिया। ये ईमान की कमजोरी है। फतवा जारी हो जाता है कि लोग ईमान से गुमराह हो गए, लोगों का ईमान कामिल नहीं रहा, लोग खुदा पर तवक्कुल छोड़ गए। यह फतवा जारी हो रहा है, लोग ये जजमेंट पास करना शुरू हो गए हैं कि जो एहतियात के तौर पर इबादत में शामिल नहीं हो रहे या इकट्ठे नहीं हो रहे एक जगह, वो बेईमान हो गए हैं। जो एहतियात बरतते हैं उन्हें बेईमान कहा जा रहा है। खुदारा ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी फतवा साजी से बाज आएं और जो ऐसा कर रहे हैं हम उनको एड्रेस ना करें, हम उनसे बहस ना करें, क्योंकि बेजा तकरार सिर्फ बाहमी इख्तलाफ और आपसी नफरत पैदा करती है। बेजा तकरारों से परहेज करें, ऐसे फतवों से परहेज करें। अखबार में 13वां और 14वां बाब है जहां पे जिल्द की बीमारी के हवाले से लिखा हुआ है कि जिस घर में हो वो घर बंद कर दिया जाए और उसमें कोई दाखिल ना हो, जिस शख्स में हो उस शख्स को कौम से अलग कर दिया जाए, उसे भी अलग रखा जाए कि कोई उसके करीब ना आए। तो क्यों हम इसको ईमान का मसला बना रहे हैं? खुदा का कलाम इजाजत देता है कि ऐसे लोग के जिनको ऐसी बीमारियां हैं और ऐसे बीमारियां बीमारियों का खतरा के जो लोगों को एक दूसरे से लग जाने का, स्प्रेड आउट हो जाने का, आउटब्रेक हो जाने का खतरा हो, उन बीमारियों के हवाले से और उन मरीजों के हवाले से ये एहतियात बरती जाए कि लोग उनके करीब ना जाएं या वो लोगों के करीब ना आए। और अगर बीमारी के फैलने का खदशा हो तो परहेज किया जाए, एक दूसरे से मिलने से परहेज किया जाए कि एक बीमारी दूसरे शख्स को मुंतकिल ना हो जाए। लिहाजा ईमान और एहतियात के मामले में फतवे ना जारी करें, परहेज करें इससे। एक जगह इकट्ठे होकर इबादत करने से अगर परहेज किया जा रहा है तो यह एहतियात के तौर पर है। कोई हमें यह नहीं कह रहा कि तुम मसीह का इनकार कर दो, कोई हमें यह नहीं कह रहा कि तुम अपने घरों में इबादत ना करो, कोई हमें यह नहीं कह रहा कि तुम सोशल मीडिया के जरिए इबादत एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर ना करो, कोई हमें यह नहीं कह रहा कि तुम अपना ईमान और अपने अकीदे से मुनहरफ हो जाओ, बल्कि हमें सिर्फ एहतियात के तौर पर कहा जा रहा है कि हम एक दूसरे के लिए इस बीमारी के फैलाव का, नुकसान का वसीला ना बने। खुदा तो हर जगह मौजूद है। मती की इंजील में खुदा यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा हों मैं उनके बीच में हूं। वो हर जगह मौजूद है, वो दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ है। खुदा का कलाम इस बात के लिए भी कहता है कि अपने घरों में भी इबादत की जा सकती है ना। हम क्यों फतवा दें कि जो इस वक्त घरों में या ऑनलाइन होकर इबादत कर रहे हैं वो ईमान से गुमराह हो गए हैं, उनका ईमान कामिल नहीं रहा? नहीं, यह एहतियात है। हम एक दूसरे की ऐब जोई ना करें, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियां ना करें। ईमान और एहतियात, फेथ और प्रिकॉशंस को हम एक दूसरे से टकरा कर फतवे और जजमेंट्स पास ना करें, इससे परहेज करें। हम में से कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के स्विच होते हैं उस बोर्ड में उन सुराखों में उंगलियां दे दे और ये कहे कि खुदा ने बचाना होगा तो बचा लेगा। सबको पता है कि इलेक्ट्रिक शॉक से जान भी जा सकती है, लेकिन हम अपने बच्चों, अपने ख़ानदान के लोगों और अपने अजीज़ों के लिए फिक्रमंद रहते हैं कि उनमें से कोई उनमें उंगली ना दे बैठे, कोई किसी नंगी तार को हाथ ना लगा दे। हम एहतियातें करते हैं, हम सड़क क्रॉस करते हैं तो हम देख के सड़क क्रॉस करते हैं, रोड पार करते हैं कि कहीं कोई गाड़ी हमें हिट ना कर जाए, हमसे टकरा ना जाए, हमारा नुकसान ना हो जाए, हमारा हादसा ना हो जाए। आम जिंदगी में तो हम एहतियातें करते हैं, लेकिन जब मामला आ जाता है ईमान और रूहानियत के मामले में तो हम कहते हैं जी ईमान की बातें अब कहां गई, अब कहां। खुदा बेवकूफी करने का हुक्म नहीं देता। खुदावंद यीशु मसीह के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो छलांग लगा देता हैकल के कुंगरे से और ठीक ठाक जमीन पे आ जाता। मुमकिन था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन वो इबलीस के बहकावे में नहीं आया कि छलांग लगा दे, बल्कि उसने वो जवाब दिया जो हम सब के लिए है कि जिस काम में तुम्हें पता हो कि इसमें खतरा है, जान बूझ के उसमें हाथ नहीं डालना। खुदा की कुव्वत पर भरोसा रखने के साथ साथ अपने हिस्से का काम भी करना है। कई लोग कहते हैं जी जो खुदा की मर्जी होगी हो जाएगा, जो खुदा ने तकदीर में लिख दिया है वो हो जाएगा, जो हमारी किस्मत में है वो होके रहेगा, इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। खुदा ने अगर बचाना है तो बचा लेगा, खुदा ने अगर मारना है तो मार लेगा। खुदा की कुव्वत पर भरोसा रखें, लेकिन अपने हिस्से का भी काम करना है। अमालिकियों के साथ जंग थी, खरूज की किताब का बाब नंबर 17 है। मूसा ने यशुआ की रहनुमाई में लोग रवाना किए कि तुम जाके लड़ो, और खुद हारून और हूर के साथ खुदावंद का असा लेकर उठाए रखा, और जब तक वो उठा रहता खुदावंद की तरफ से रूहानी ताकत मिलती रहती। मूसा रूहानी पहलू से उनकी मदद कर रहा था और यशुआ की रहनुमाई में फौज जंग लड़ रही थी, सो खुदा की ताकत उन्हें हासिल थी, लेकिन यशुआ को सिपाही लेकर लड़ने की जरूरत भी थी। जरूरत है रूहानी पहलू साथ साथ रहे, खुदा की ताकत पर भरोसा रहे, लेकिन इंसानी कोशिश भी करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब जन्म के अंधे की आंखों पर मिट्टी सान कर लगाई तो उससे कहा कि जा शलोह के हौज में जाके इसे धो ले। कुछ एफर्ट उसे करना पड़ी, उस अंधे को कोशिश उसे करना पड़ी। खुदावंद यीशु उसकी बिनाई उसी वक्त कह के बहाल कर सकता था, लेकिन कुछ इशारा दिया खुदावंद यीशु ने कि रूहानी कुव्वत और मदद तो तुम्हें मिल जाती है, लेकिन कुछ थोड़ी सी कोशिश तुम्हें भी करनी है। हम भी इस माहौल में, हमारी जिम्मेदारी है कि खुदा पर भरोसा जरूर रखें कि वो हमें बचाएगा, हमें छुड़ाएगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने हिस्से का काम करना है, हमें अपने हिस्से की एहतियात करनी है, हमें अपने हिस्से का वो सारे माहौल का कि सफाई सुथराई का ख्याल रखना है जिसमें हम रहते हैं। जो कुछ हमें बताया जाता है कि इन बातों से परहेज करो, हमें उनसे परहेज करना है। जो काम करने को कहा जाता है हम उसको करें, ये हमारे हिस्से का काम है। वबा से बचने के लिए अपना किरदार हमें खुद अदा करना है। अब देखिए कि कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ नर्सेस हैं, दुनिया में कई मुल्कों में ऐसा हुआ कि जो इस वायरस के शिकार मरीजों का इलाज कर रहे थे वो खुद उस वायरस से बीमार हो गए और फिर उन्होंने जानें भी दी हैं। वो मोहसिन हैं, इंसानों के मोहसिन हैं, उनकी बड़ी नेकी है, बड़ी खिदमत, बड़ी कुर्बानी है, जिन्होंने अपनी जानें भी कुर्बान कर दी हैं, लेकिन वो इलाज करते रहे जब तक कि वो खुद बीमार ना पड़ गए। एहतियात करनी है। खुदा ताकत देता, खुदा मदद करता, खुदा बचाता और छुड़ाता है, लेकिन हमें खुद भी एहतियात करनी है, हमें खुद अपने हिस्से का काम करना है। हम खुद को किसी कोरोना वायरस के मरीजों की वार्ड में जाके हम बिल्कुल बगैर किसी हिफाजती इकदाम के जाके उनमें रहना शुरू कर दें तो इसका यह मतलब है कि हम बेवकूफ़ हैं। इसमें ईमान की बात नहीं, यह बेवकूफ़ी है। हम खुदा को आजमा रहे हैं और लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। अपने हिस्से का काम हमें खुद करना है, खुदा ने जो करना है वो उस पर छोड़ दें। उसकी ताकत पर भरोसा ज़रूर रखें, लेकिन अपने हिस्से का काम भी ज़रूर करें और अपनी आदतें और रवैये दुरुस्त करें। खुदा ने भी कहा कि अगर मैं वबा भेजूं अपने लोगों में और फिर ये खाकसार होकर दुआ करें, अपनी बुरी राहों से फिरें और मेरे दीदार के तालब हों, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। यूना की मुनादी सुन के नीनवा के लोगों ने अपनी राहें और आदतें दुरुस्त की, अपने काम दुरुस्त किए, जो गलतियां वो करते थे वो उससे बाज आ गए, तो खुदा ने उन पर रहम किया। हमें अपनी आदतें और रवैये दुरुस्त करने हैं, हमें सफाई सुथराई की आदत अपनानी है, हमें एहतियात प्रिकॉशंस सेफ्टी मेजर्स की आदत अपनानी है, हमें बेएहतियातियां नहीं करनी। खाने पीने में हमें एहतियात की ज़रूरत है, हमें लिबास के चुनाव में, हमें मिलने जुलने में एहतियात की ज़रूरत है, हमें ज़िंदगी के फैसले करने में एहतियात की ज़रूरत है। हम जिस्मानी तौर पर भी दुख उठा सकते हैं अपने गलत फ़ैसलों से, और रूहानी तौर पर भी, रूहानी तौर पर यूँ कि जब हम खुदा के हुक्मों के खिलाफ चलते हैं तो खुदा नाराज़ होता और हमें हलाकत के लिए अकेला छोड़ देता है, फिर वो हमें बचाता नहीं। और खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, ज़िंदगी के चाल चलन में अगर हम बेहतियाती करें, हम गलत तौर तरीके अपनाएं, गलत आदतें अपनाएं, तो हम नुकसान उठाते हैं जिस्मानी तौर पर। हाथ धोए बगैर अगर हम खाना खा लेते हैं तो कई तरह की चीज़ें हमारे हाथों पर जरासीम गंदगी लगी होती है, वो हमारे अंदर जाकर हमें बीमार कर सकती है। सादा सी ये मिसाल है, हम जब भी खाने के लिए जाते हैं हम कोशिश करते हैं हमारे हाथ साफ़ हों और हम फिर खुराक खाएं। हम अपने बदन पर, कपड़ों पर लगी हुई गंदगी को उतारते हैं ताकि ये बदनुमाई जाती रहे और हमारे जिस्म को, हमारे पर्सनैलिटी को कोई नुकसान ना पहुंचे। हम अपनी आदतें और अपने रवैये दुरुस्त करें, जो बेहतियातियाँ हम करते रहे हैं उससे बाज आ जाएँ, जो गुनाह बदियाँ और नाराज़गियाँ हम करते रहे हैं उससे बाज आ जाएँ, जो सितमगरी लूट मार और गरीब और मोहताज को सताने की गुनाह और बदियां हम करते रहे हैं और दूसरों को ना हक सताते रहे हैं, हम उससे बाज आ जाएं। हम इंसानों ने मजबूरी तौर पर कलेक्टिवली, हम सब ने एक दूसरे को एक्सप्लॉइट किया है, एक दूसरे का इस्तेहसाल किया है, एक दूसरे को दगा दिया है, एक दूसरे का नुकसान किया है। हमने इंसानों के हक मारे हैं और हमने खुदा की मखलूकात को भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया, मिसयूज किया। हमने कायनात का जो निज़ाम बैलेंस है उसे ख़त्म किया है। हम पानी को आलूदा कर रहे हैं, हम माहौल को गंदा कर रहे हैं, हम खुदा की मखलूकात को ख़त्म कर रहे हैं, हम जंगलात पौधे ख़त्म कर रहे हैं और कायनात का निज़ाम हम ख़राब कर रहे हैं। हम अपनी आदतें, अपने बिहेवियर्स, अपने एटीट्यूड्स, अपने कंडक्ट, अपने रवैये दुरुस्त करें, ये हमारी जिम्मेदारी है इस माहौल में। और हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली हिदायत की हमें पैरवी करनी है। हुकूमतें जो कहती हैं वो हमारी भलाई के लिए कहती हैं। खुदा का कलाम ये बताता है कि हुकूमतें खुदा की तरफ से हैं और हमें आला हुकूमतों के ताबे रहना है। जो कुछ हुकूमत की तरफ से हमें हुक्म मिलता है हम वो माने। हम आपस में बैठ के हुकूमत के इकदाम की बुराई करते हैं, लो जी कारोबार बंद कर दिया, लो जी दुकानें बंद कर दी, लो जी हमारी कंपनी बंद हो गई, हम खाएंगे कहाँ से। अगर वो आपको इजाज़त दे दें कि जैसे मर्जी रहो, तो दो तीन दिन में पूरे का पूरा मुल्क इस वबा का शिकार होके या अस्पतालों में होगा या कब्रों में। अगर कुछ दिन के लिए हुकूमत चाहती है कि हम महफूज रहें, हम अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए ज़िंदा रहें, तो हमें हुकूमत के इस कदम को खुशदिली से कबूल करना है। थोड़े दिनों का ये मामला है कि जिसमें हमें कारोबार से और आमदनी से दूर रहना पड़े, लेकिन इसमें ज़्यादा वक्त की भलाई है। हम हुकूमत के इकदामात के नफी ना करें, हम उनके खिलाफ ना चलें, बल्कि उनकी बात माने। वी शैल ओबे एंड स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द गवर्नमेंट इन दीज डेज। हम ज़रूर कोशिश करें हम हुकूमती इकदामात की पूरी पैरवी करें, उसमें ज़रा भी खिलाफ वर्जी ना करें। वबा से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें। फिर वही मिसाल दूंगा कि बिजली के स्विच में, सुराखों में, सॉकेट में कोई हाथ नहीं डालता जानबूझ के। आप भी कोशिश ना करें कि जहां वबा का खतरा हो वहां चले जाएं। हम मैं अपने समाज की बात करता हूँ, हमारी बड़ी आदत होती है कि कहीं गली में कोई शोर हो तो हम सारे निकल के देखने चले जाते हैं कि क्या हो रहा है। किसी के घर मिस्त्री लगे हों, काम कर रहे हों, तो हम ऐसे शौक में देखते रहते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं। कुछ भी हो रहा हो, हमें कोई ताल्लुक नहीं होता उस काम से, और हम खड़े होकर तमाशाई बने होते हैं। जहां खतरा हो वहां से अलग हो जाओ। अकलमंद, वाइज, द पर्सन ऑफ गुड माइंड वो है कि जो आफत, बला को, नुकसान और खतरा देने वाली चीज को देखकर छुप जाता है, अपने आप को महफूज कर लेता है। लेकिन जो नादान हैं, जो अहमक हैं, जो बेवकूफ हैं, जो फूल्स हैं, जो फूलिश हैं, वो बड़े चले जाते हैं, वो बला की परवाह नहीं करते, कहते हैं कोई बात नहीं, जो कुछ होगा देखी जाएगी, और फिर वो काबू आते हैं। ना सिर्फ वो काबू आते हैं बल्कि उनकी वजह से और बहुत से लोग भी वबा का शिकार हो सकते हैं। इसलिए वबा से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। कोशिश करें बचने की, बचने की कोशिश करें, क्योंकि आपके बचने से आपका खानदान, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार और पूरी दुनिया बच सकती है। अगर आप नहीं बचेंगे तो आप बहुतों को अपने साथ लेकर डूबेंगे। मुसीबत के खात्मे तक अपने घरों में रहना है, यह बड़ी एहतियात करनी है। खुदा के कलाम में आपने आजकल बहुत ज्यादा ये आयत सोशल मीडिया पर फैल रही है, लोग एक दूसरे को भेजते हैं। यसाया के सहीफे में से 26वां बाब और 20वीं आयत है कि खुदा ने कहा कि तुम अपने घरों में दाखिल हो, दरवाजे बंद करो और बाहर ना निकलो, अपने घरों में, खलवत खानों में रहो जब तक कि मेरा कहर टल ना जाए। ये वबा खुदा का कहर, खुदा का गुस्सा है, जब तक ये टल नहीं जाती अपने घरों में रहें, महफूज रहें। और भी कई मिसालें बाइबल में से आजकल बड़ी सर्कुलेट हो रही हैं, फैल रही हैं, जैसे नूह सारे तूफान में क्यों महफूज रहा अपने घराने समेत, क्योंकि वो कश्ती के अंदर था, वो बाहर नहीं था। आज सुबह जब मैं शख्सी मुताला कर रहा था तो यशुआ की किताब में से मैं वो वाकयात पढ़ते हुए, जहाँ यरीहो शहर में जासूस भेजे गए और राहिब नामी खातून थी वहाँ पर, जब जासूसों के साथ उसने मेहरबानी की तो उन्होंने उससे कहा कि जब हम फाते हो जाएंगे, जब हम इस शहर को तस्खीर कर लेंगे, इस पर फतह पा लेंगे, तो तुम जितने लोग तेरे घर के अंदर होंगे वो महफूज रहेंगे। हम कोशिश करें हम अपने घरों के अंदर रहें जब तक कि ये आफत, ये वबा टल नहीं जाती। और थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि घरों में रहते हुए हम किस तरह से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने फाटकों, अपने दरवाज़ों, अपने मदखलों के, अपने गेट्स के, अपने डोर्स के अंदर रहना है। जब मौत का फरिश्ता मिस्र में मार रहा था पैलोटों को, तो बनी इसराइल अपने दरवाज़ों के अंदर बंद थे और उन दरवाज़ों पर बर्रे का खून लगा हुआ था। हमारा फसा का बर्रा यीशु मसीह है, उसका खून हमारी जिंदगियों पर है। हम अपने घरों में अगर बंद हैं हम महफूज रहेंगे, अगर बाहर फिरेंगे तो ख़तरा है कि हम इस वबा का शिकार हो सकते हैं। इसलिए अपने घरों में महफूज रहिए। दूसरों की भलाई की खातिर ज़ाती नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़े तो कोई बात नहीं। इन दिनों सब लोग एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं, दूसरों की भलाई का सोचें। अगर दूसरों की भलाई के लिए हमें ज़ाती तौर पर अपने कारोबार का, अपनी आमदनी का नुकसान उठाना पड़ता है तो परवाह न समझें। मैं अपनी कौम, अपने शहर, अपने ख़ानदान की सलामती के लिए ये नुकसान बर्दाश्त कर जाऊँ, ये हमारी जिम्मेदारी है। कारोबार बंद करना पड़ रहा है कोई बात नहीं, यह पूरी कौम का मामला है, मैं कारोबार का नुकसान बर्दाश्त करूंगा। अगर मेरी आमदनी बंद हो रही है कोई बात नहीं, मैं आमदनी का नुकसान बर्दाश्त करूंगा। अगर आप कारोबार करने वाले हैं, आप मालिक हैं, आप ओनर हैं, आप बॉस हैं, और आपके मातहत मुलाजमीन या वर्कर्स काम किए बगैर अगर आप सोचते हैं कि उनको तनख्वाह मिलेगी तो दें, इन दिनों में दें, उन पर जुल्म ना करें, उन पर रहम करें, उनका हक समझकर उनको दें, अपना नुकसान उठाना बर्दाश्त कर लें। वर्कर्स का हक बनता है आपसे इन दिनों की आमदनी लेना, क्योंकि इसके साथ उनका घर चलेगा। मदद करें, जाती नुकसान उठा लें, बर्दाश्त कर लें, कोई परवाह नहीं, लेकिन दूसरों की मदद करें, दूसरों की भलाई करें। और इसी में जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो हॉस्पिटल्स में स्टाफ है, मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ है, या रेस्क्यू वर्कर्स हैं, या पुलिस, सिक्योरिटी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो फ्रंट लाइन पे हैं। वो अपनी जाने हथेली पे रख के, अपना मुस्तकबिल दांव पे लगा के उन लोगों की मदद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उनकी भलाई चाहते हैं, अपनी परवाह नहीं कर रहे, वो उनकी भलाई चाहते हैं। सो हम अपना भी नुकसान उठाना पड़े तो परवाह नहीं, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए अंदर भी बंद रहें, कारोबार भी बंद रखें, एहतियात भी करें, और हो सके तो दूसरों की मदद करें, क्योंकि खुदा राजी होता है इससे। खुदावंद यीशु मसीह ने नेक सामरी की जो तमसील बताई हमें, वो अपनी राह पे जा रहा था, लेकिन उसने शख्स को देखा जो मुआ है, रुका, अपने वक्त का नुकसान किया, अपने जानवर पे उस शख्स को बिठाया और अपने दवा दारू भी उसे लगाई, और जो खाने पीने का भी उसका इंतज़ाम किया, उसको सराय में यानी इन में उस जगह लेकर गया कि जहां वो आराम कर सकता था, उसका इलाज हो सकता था, और अपना पैसा भी लगाया। कितनी सेक्रीफाइस की, कितनी कुर्बानी दी नेक सामरी ने ताकि उस शख्स का भला हो जाए। और यीशु ने कहा तू भी ऐसा ही कर, हमारे लिए हुक्म है कि हम भी ऐसा ही करें दूसरों की भलाई के लिए। अगर हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है तो कोई बात नहीं, और वबा का शिकार होने वालों की बहाली के लिए हर मुमकिन तामन करें। आप हुकूमत को आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हिस्सा दे सकते हैं, अपने अतियात दे सकते हैं, फंड्स दे सकते हैं तो आप दें। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है, कोई भी आपका डिपार्टमेंट है मेडिकल में, आप मदद कर सकते हैं अपने टैलेंट्स, अपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ, तो आप जरूर उनकी मदद करें। जो बीमार हो चुके हैं, जो वायरस का शिकार हो गए हैं, उन्हें मदद की जरूरत है, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर शिफा की बहाली की जरूरत है, बल्कि साइकोलॉजिकली, नफसियाती तौर पर, जहनी तौर पर भी उन्हें इस मुश्किल, इस ट्रॉमा से निकलने के लिए मदद की जरूरत है। अगर आप ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात हो, आप उसे जानते हैं कि जो इस वबा से निकल के आ गया है, उसका हौसला बढ़ाएं, उसको सपोर्ट करें, उसको तावन करें। और अगर आप किसी शख्स ऐसे से राबता कर सकते हैं, मिलना तो अच्छा नहीं है, किसी ऐसे शख्स से कि जिसको ये वबा लग गई है, उसको मिलना मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर आप का राबता होता है किसी भी जरिए से, तो उनको आप हौसला दें, दलेरी दें, कहें हम आपके लिए दुआ करते हैं, और आप ज़रूर इस में इसे कामयाबी के साथ बाहर आओगे, फतह पाओगे, और आप ज़रूर बचाए जाओगे, और आप शिफा पाओगे। उनकी शिफा के लिए, उनकी बहाली के लिए हर मुमकिन मदद करें। और जो साइंटिस्ट हैं वो कोशिश कर रहे हैं, रिसर्चर्स कोशिश कर रहे हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और फिर ज़रूरतमंदों को अपनी नेमतों और वसाइल में शरीक करें। ये लॉकडाउन में बड़े लोग हैं, बड़े ख़ानदान हैं, हमने दुआ भी की उनके लिए, खुदावंद उनकी ज़रूरतें पूरी करें। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज याद रखिएगा, उसने कहा जब इब्ने आदम अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, मेरे बाप के मुबारक लोग, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बीमार था तुमने मेरी खबर ली, नंगा था तुमने जो कपड़ा पहनाया। वो कहेंगे कब हमने ऐसा किया? तो बादशाह कहेगा जब तुमने इन छोटों में से किसी के साथ ये किया तो मेरे साथ किया। इस लॉकडाउन में आप अपने इर्द गिर्द देखें, कोई ख़ानदान है, कोई शख्स है कि जिसकी आमदनी बंद हो गई है, जिसके घर में वसाइल नहीं कि वो इन लॉकडाउन के दिनों में, इन हिफाजती बंदिशों के दिनों में वो अपने और अपने ख़ानदान के रोज़ी रोटी का मुनासिब बंदोबस्त अगर नहीं कर सकता, और खुदा ने आपको वसाइल दिए हुए हैं, तो आप ज़रूर उनकी मदद करें। खुदा के कलाम में लिखा है अगर किसी के पास दो कुर्ते हों तो एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है, और अगर किसी के पास खाना हो तो वो भी उसके साथ ऐसा ही करे। कि आपके पास खाना है और किसी के पास नहीं है तो आप बांट लीजिए उसके साथ। अमाल की किताब चौथा बाब है, इब्तदाई कलीसिया का बयान है कि सब लोग अपनी चीज़ों को अपनी नहीं मानते थे, एक जगह इकट्ठी करके रसूलों के कदमों में लाद रखते थे कि इन्हें बांट दीजिए हर एक की ज़रूरत के मुताबिक। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, हुकूमतें, तंजीमें, मिनिस्ट्रीज़, खिदमती इदारे इस काम में लगे हुए हैं कि इन दिनों में ضرورت مند خاندانوں اور افراد تک راشن بالخصوص پہنچایا جائے. ہم ان کے لیے شکر گزار ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ایسے اداروں اور لوگوں کی مدد کرے، انہیں اور برکت دے، اور خدا ہر ایک محتاج اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے. ایک گزارش کروں گا کہ جو لوگ اس مدد کے کام میں شریک ہیں، برائے مہربانی وہ فوٹو بنا کر کسی محتاج اور ضرورت مند کی غربت کا، اس کی مجبوری کا تماشا دنیا کے سامنے نہ بناؤ. کسی کی مدد کرتے ہو تو خاموشی سے کرو. کسی کو اگر آپ وہ پارسل، وہ راشن کا پیکج آپ دیتے ہو تو ان کی فوٹو اتار کے ان کا مذاق اور ان کی عزت کا تماشا ساری دنیا کے سامنے نہ لگائیے. خدا را اس بیہیویئر کو بھی درست کریں، کیونکہ ہم غریبوں کا استحصال کرتے ہیں. مدد کریں اپنے ارد گرد لوگوں کی. اور سب سے پہلا کام مقامی کلیسیا کا ہوتا ہے، جس کے آپ رکن ہوتے ہیں، ممبرز ہوتے ہیں، جس میں آپ اپنی دہیہ کی ہدیے اور نذرانے باقاعدگی سے دیتے ہیں. آپ اس کلیسیا میں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ہماری، ہاں ہم میں سے یہ شخص غریب ہے، محتاج ہے، اس کی مدد کی جانی چاہیے. حکومتوں کو نہ دیکھیں، تنظیموں کو نہ دیکھیں، اپنے مقامی چرچ، مقامی کلیسیا کے ساتھ رابطے میں رہیں. اور تمام پاسبان اور جو کمیٹیوں کے رکن ہیں، سیشن ہیں، پیرش کونسلز ہیں، ایلڈرز ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے کلیسیا میں، اس گلے میں جو خدا نے ان کو سپرد کیا، دھیان رکھیں کہ کون ضرورت مند ہے، تاکہ اس کی مدد کی جا سکے. سو ہم سب کا شخصی اور اجتماعی فرض ہے کہ ہم اس صورتحال میں ضرورت مندوں کی مدد کریں، انہیں اپنے وسائل میں شریک کریں، اور میدان میں موجود سورماؤں کے لیے دعا کرنی ہے. The warriors in the front line, battle field میں جو ہیں، جو سورما ہے، میں نے ان کے لیے سورما کا لفظ استعمال کیا، warriors، یہ بندوق لے کر، تلوار لے کر، یا ٹینک توپ کے ذریعے، یا ڈرون، یا ہوائی جہازوں پر بیٹھ کر میزائل کے ساتھ یہ جنگ نہیں کر رہے، یہ اندیکھے دشمن کے ساتھ بغیر کسی دوائی کے اور بعض جگہوں پر حفاظتی انتظامات کے بغیر جنگ لڑ رہے ہیں. یہ ڈاکٹرز ہیں، یہ نرسز ہیں، یہ ہاسپٹلز کا سٹاف ہے، یہ ریسکیو ورکرز ہیں، یہ صفائی کرنے والا عملہ ہے جو ہمارے علاقوں کو صاف رکھ رہے ہیں، یہ پولیس ہے، یہ فوج، پیراملٹری آرگنائزیشنز ہیں جو فرنٹ لائن پہ ہیں. یہ معاشرے میں سے نہ صرف امن و امان قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا ہاسپٹل پہنچاؤ، اور جو مر جاتے ہیں ان کے کفن کا، دفن کا بھی انتظام انہیں کو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو اس وبا کے ساتھ مر جاتے ہیں ان کے جنازوں میں ان کے خاندانوں کو بھی شریک ہونے کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر وہ قریب آئیں گے تو ان کو بھی وائرس لگ جانے کا خطرہ ہوتا ہے. سو ہم دعا کریں ہاسپٹلز میں کام کرنے والوں کے لیے، حکومتوں کے لیے کہ جو انتظام کرتے ہیں، انتظامیہ کے لیے جو سٹی لیول اور ویلج لیول تک انتظام کرنے میں پیش ہیں، اور جو امن و امان کا انتظام کرنے میں پیش ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں، وہ خطروں میں ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں. اور اس کے ساتھ وہ ایک فوج کے جو اپنی لیبارٹریز میں سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ ہم کوئی ویکسین، کوئی دوا، کوئی انجیکشن، کوئی ٹیبلٹ، کوئی سیرپ بنا لیں، دعا کریں کہ خدا ان کی کوششوں کو قبول کرے اور جلد وہ کامیاب ہوں. سو یہ اس جنگ میں، اس وائرس آفت وبا کے ساتھ لڑائی میں یہ ہراول دستہ ہے، یہ ہماری فرنٹ لائن فورس ہے، ہمیں اس کے لیے دعا کرنا ہے. اور بہت سارے ملکوں میں اور پاکستان میں بھی یہ کمپین ہے کہ ہم ان کو سلیوٹ کرتے ہیں. ہم ان سارے ڈاکٹرز، نرسز، سٹاف اور ساری آرگنائزیشنز جو اس میں ہیں، ہم دل سے ان کے شکر گزار ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں. خدا انہیں محفوظ رکھے، اور ان کے خاندان بھی دکھ اٹھا رہے ہیں، خدا ان کے خاندانوں کو بھی سلامت رکھے. سو ہم ان کے لیے دعا جاری رکھیں. اب حفاظتی بندشوں میں وقت کا استعمال کیسے کیا جائے؟ ہم بند ہیں اپنے گھروں میں، کوشش کریں بند ہی رہیں، باہر نہ نکلیں، لاک ڈاؤن ہے، حفاظتی بندش ہے، ہم اریسٹ نہیں ہیں، ہم قید میں نہیں ہیں، لیکن یہ حفاظتی بندش ہے ہم پر، لاک ڈاؤن. میں سمجھتا ہوں یہ حفاظتی بندش ہے، اور ہم اسے جبر نہ سمجھیں بلکہ ہماری حمایت سمجھیں. हमारी फेवर समझें इसे, हमारे फायदे के लिए है। हम इसमें वक्त कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने अपने घरों में हैं या अपने दोस्तों के साथ हैं, अपने रूम्स में हैं, तो जो लोग उस घर में उस चार दीवारी के अंदर मौजूद हैं, हम आपस में एक दूसरे से ताल्लुकात बेहतर बनाएं। इन दिनों में हमें वक्त मिला है कि हम 24 घंटे एक जगह पर रह सकते हैं। हम खानदानों को भी ये वक्त कम मिलता है, जो काम करते हैं वो दिन का बड़ा हिस्सा या रात का हिस्सा वो बाहर गुजारते हैं, लेकिन अब जो घरों में हैं वो 24 घंटे या ज़्यादातर वक्त वो अपने घरों में रहेंगे, अपनी इकामतगाहों में, अपनी रहायशगाहों में, अपनी एकोमोडेशन में रहेंगे। सो म्यूचुअल रिलेशंस आप अपने इम्प्रूव कीजिए, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के मामलात को समझने की कोशिश करें। गैजेट्स और जो सोशल मीडिया है इसको थोड़ी देर के लिए आप रोकें, और एज अ फैमिली, एज फ्रेंड्स, दोस्तों के तौर पर, खानदान के अफराद के तौर पर एक दूसरे के साथ बैठें और आपसी ताल्लुकात को इम्प्रूव करें, इस मोहब्बत में इजाफा कीजिए। और अपने दोस्तों, हमसायों और रिश्तेदारों से राब्ता करें। यह मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि अपनी जिम्मेदारियों में बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने करीबी रिश्तों को भी फ़ोन नहीं कर सकते, उनसे बात नहीं कर पाते। कभी टाइम डिफरेंस हो जाता है, कभी ड्यूटीज़ के या काम की नौइयत ऐसी होती है कि जब वहाँ काम करने के वक्त होता है तो हम आराम करते हैं, जब हमारे काम का वक्त होता है तो वहाँ आराम कर किया जाता है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो कि आप अपने रिश्तों, नातों में, दोस्तियों में, ताल्लुकात में वक्त ना दे पाते, उनसे बात ना कर सकते हों। अब आप उनको विज़िट नहीं कर सकते क्योंकि आप हिफाजती बंदिश में हैं, वो अपनी जगह पर हिफाजती बंदिश में हैं। इस वक्त का फ़ायदा उठाइए, कोशिश करें हर रोज़ किसी एक रिश्तेदार से राब्ता करें जिससे आपने बहुत देर से राब्ता नहीं किया। कोशिश करें उन दोस्तों से बात करें जिनसे मुद्दत हुई आपने बात नहीं की। कोशिश करें अपने हमसायों को फ़ोन करें, अपने साथ रहने वालों को, अपनी बिल्डिंग, अपने मोहल्ले में रहने वालों को राबता करें, एक दूसरे से हाल अहवाल पूछें। हर कोई अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नज़र करें। खुदा का कलाम ये सिखाता है, हमारे ख़ानदान के अंदर और ख़ानदान के बाहर हमारे रिलेशनशिप बेहतर हो सकते हैं, हम इस वक्त को इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात जो है कि इस वक्त को बेशक आप इस्तेमाल करेंगे, कोई फिल्में देखेगा, कोई गेम्स खेलेगा, कोई किसी तरह की एक्टिविटी घर में करेंगे, बच्चों की ई लर्निंग भी होगी, अपने बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान ना होने दें, अपना काम भी आपने करना है जो आपको ऑफिस की जॉब है, आपने घर से काम करना है, ऑनलाइन आप काम करते हैं, वो भी करें, ज़रूर करें, लेकिन इसके साथ साथ शख्सी और ख़ानदानी तौर पर खुदा के साथ रफाकत की आदत अपनाएं। जब आप घर में हैं, कहीं बाहर भी नहीं जाना, कोई काम नहीं है, और ऐसा थोड़ा थोड़ा वक्त करके आप शुरू कर सकते हैं। शख्सी तौर पर भी खुदा से बात करें, दुआ में वक्त गुजारें, खुदा का कलाम पढ़ें, खुदा का कलाम सुन सकते हैं। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आपके पास फोन्स हैं, इंटरनेट है, आप सुन सकते हैं खुदा का कलाम। अगर पढ़ सकते हैं तो आपके घर में बाइबल मुकद्दस है या आपके फ़ोन में है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। आप दुआ करें और सारा घराना मिलकर थोड़े वक्त के लिए एक साथ मिलकर दुआ करें, और इसमें जो घराने का सरबराह है या जो एक जगह पर रहने वाले लोग हैं उनमें जो सबसे उम्र में या रिश्ते में बड़ा फ़र्द है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो सबको इकट्ठा कर लेके आओ हम बैठ कर दुआ करें, आओ हम बैठ कर खुदा का कलाम पढ़ें, आओ हम बैठ कर खुदा की बातें करें, आओ हम खुदा से फरियाद करें, आओ हम खुदा से मुआफ़ी मांगें, आओ हम खुदा से मिन्नत करें कि खुदा तू इस मुसीबत से हमारी जान छुड़ा और दुनिया की जान छुड़ा। आप अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए खुदा से रहनुमाई मांगिए। आप दुआ, कलाम और खुदा की हम्द व सना में वक्त गुजार सकते हैं। गीत गाइए, जबूर गाइए, कलाम पढ़िए, कलाम सुनिए और दुआ कीजिए। यह वक्त है जब बच्चे आपके साथ हैं घर में, आपके पास वक्त है कि आप उनके साथ मौजूद हैं, वक्त दे सकते हैं। अपने बच्चों को दुआ करना सिखाइए, उन्हें कलाम पढ़ने की आदत डालिए, उन्हें खुदा के कलाम में से कुछ बातें सिखाइए, وہ روح میں مضبوط ہوں، ان کی توجہ، ان کا ذہن صرف دنیا کی طرف نہ رہے، وہ کارٹونز اور ویڈیوز کی طرف اور گیمز کی طرف نہ لگے رہیں بلکہ خدا کی طرف بھی آئیں۔ سو خدا کے کلام میں سے جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو اس کی برکت ہوگی، جب خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں گے اس کی برکت ہوگی، خدا مضبوط کرے گا۔ زبوری کان میں تب اثر کرتا ہے جب ہم خدا کے پروں کے نیچے آتے ہیں، جو خدا کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں، جو خود کو اور گھرانے کو خدا کے پروں کے نیچے دے دیتے ہیں، زبوری کان میں ان کی زندگی میں کام کرتا ہے، وہ محفوظ رہتے ہیں، خدا انہیں بچاتا اور چھڑاتا ہے۔ خدا کو وقت دیں۔ خدا نے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اسی لیے ان بندشوں میں باندھ دیا ہے کہ میری طرف متوجہ کر ہو جاؤ، میری طرف رجوع لاؤ، ٹرن ٹو می، گاڈ از کالنگ، آؤ خدا کی طرف رجوع لائیں اور اس وقت میں اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور انہیں پورا کریں۔ یہ وقت گزر جائے گا لیکن اس وقت سے کچھ سیکھ کے ہم آگے چلیں۔ زندگی کے جھمیلوں سے نکل کر اب فراغت ہے، فری ٹائم ہے ہمارے پاس گھروں میں، اسے بہتر طور پہ استعمال کریں خدا کے ساتھ رفاقت میں۔